मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 13 फरवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही दो मित्रों का भी स्वागत करता हूं जिनके नाम है नितेश यादव, आप गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं, और दूसरे सोनू कुमार मधेपुरा बिहार से हैं, जिन्होंने अकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए एडमिशन लिया है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं अर्थशास्त्र का मूल तत्व या केंद्र या यूं कह लीजिए बाजार का केंद्र, इस पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं, क्योंकि आज बातें करने के लिए कुछ दूसरी बातें भी मौजूद हैं। न्यूज आप लोगों ने दोस्तों सुनी होगी, मैं बार बार इसे रिपीट करता रहता हूं। हो सकता है कि आप में से जो मेरे पुराने श्रोता हैं वो थोड़े से इरिटेट भी हो रहे हों कि क्यों सर बार बार याद दिलाते हैं कि न्यूज़ आपने सुनी होगी। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सुनी ही होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ आप मेरी उम्मीद को झुठलाइए मत, न्यूज़ सुनिए ही सुनिए। क्योंकि यदि आप न्यूज़ नहीं सुनेंगे तो इनफैक्ट, और यहाँ तक कि अखबार नहीं पढ़ेंगे, दोनों काम नहीं करेंगे, तो मेरे इस डेली ऑडियो लेक्चर्स के साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। और फिर आपको यही लगेगा कि यार यहाँ तो फालतू की बातें की जाती हैं, यहाँ ये हमारे काम की नहीं आपको लगेगा। लेकिन अगर आप न्यूज़ सुन लेंगे और अखबार पढ़ लेंगे तब शायद मेरे साथ न्याय कर सकेंगे। अगर मेरे डेली ऑडियो लेक्चर के साथ न्याय की बात कर रहा हूँ तो मान करके चलिए कि मेरे साथ ही न्याय कर सकेंगे। फ्रेंड्स, एक आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा कल न्यूज में था, और वैसे अखबारों में भी आंकड़ा आ चुका है कि जो विवाद होते हैं टैक्सेस को लेकर, जैसे आपके ऊपर टैक्स लगाया गया, आप कोर्ट में चले गए कि नहीं हमारे ऊपर टैक्स गलत लगाया गया है, इतना नहीं होना चाहिए, तो मामला विवाद में पड़ जाएगा। मैंने इससे पहले भी इस आंकड़े के बारे में आपको बताया था। तो ये जो आंकड़ा है मित्रों, इसकी जो संख्या है आंकड़े की, पैसे की, धन की, जो इस तरह के विवादों में फंसी हुई है, वह है 9 लाख करोड़ रुपए। आप सोच करके देखिए कि 9 लाख करोड़ रुपए केवल विवादों के कारण फंसे हुए हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि इसमें सभी तो सरकार को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मिलना होता तो लोग विवाद में नहीं जाते, तो आधा मान लीजिए, 4.5 लाख, 4 लाख मान लीजिए कि सरकार को तो मिलने ही चाहिए। सरकार ऐसा तो नहीं है कि बैठे ठाले उसने टैक्स लगा दिया होगा, उसके पास भी कुछ ना कुछ तो आधार होगा ही। तो इतना धन बेकार पड़ा हुआ है केवल विवादों के कारण। आपको मालूम है कि बजट में विवाद से विश्वास तक करके एक प्रोग्राम लॉन्च कर किया गया है, और इसको कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति भी दे दी है। और यहां आप एक बात और ध्यान रखिए कि न्यायालय ने भी कुछ दिनों पहले ये एक मुहिम सी मुझे लगता है जैसे शुरू कर दी है कि मध्यस्थता होनी चाहिए। जो न्यायिक मामले होते हैं उनमें एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई ऐसा सिस्टम हो कि दोनों के बीच में थोड़ा सुलह कराने की कोशिश करें। अगर सुलह हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाती तो फिर अदालत है ही। तो ये एक प्रकार की सुलह वाली ही बात हमें यहां दिखाई दे रही है। न्यूज में आपने ये भी सुना कि अरविंद केजरीवाल जी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। ये विधायक दल का नेता क्या है, इसे थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि जो स्टूडेंट बिल्कुल शुरुआत करते हैं उन्हें सब शब्दावली अटपटी सी लगती है कि भैया वो तो मुख्यमंत्री थे ही, तो मुख्यमंत्री थे तो अब विधायक दल का नेता क्या मतलब, उनको तो मुख्यमंत्री बनना ही बनना है। इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है? देखिए, संवैधानिक स्थिति यह है कि जो पार्टी है वो चुनाव लड़ती है, पार्टी है चुनाव लड़ती है, बस खत्म हो गई बात। अब जो चुनाव जीत कर आते हैं उन्हें हम कहते हैं विधायक, विधानसभा में उन्हें कहा जाता है विधायक, और संसद में, लोकसभा में कहा जाता है सांसद, राज्यसभा में भी सांसद कहलाते हैं, है ना। MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में इसके लिए शब्द दिया गया विधायक। हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है, जो शब्दावली है, वो ये है कि सरकार किसकी बनेगी, जिसके पास बहुमत होगा, यानी कि जिस पार्टी के आधे से अधिक सदस्य होंगे। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो ये जो विधायक चुनकर आए हैं ये अपना नेता चुनेंगे कि हमारे ये नेता होंगे, और जो नेता होगा वही मुख्यमंत्री होगा या प्रधानमंत्री होगा। इसीलिए कहा गया है कि विधायकों ने, यानी कि अब पार्टी में लाखों करोड़ों लोग हों उससे कोई मतलब नहीं है, जो इंपॉर्टेंट हैं अब उनके वो 62-63 सदस्य हैं जो चुनकर आए हैं, ये अपना नेता चुनेंगे। अब स्वाभाविक तौर पर व्यावहारिक है कि अगर आप पार्टी जीती है और मुख्यमंत्री पहले से केजरीवाल साहब थे तो वही केजरीवाल साहब ही विधायक दल के नेता बनेंगे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो संवैधानिक स्थिति है वो ये है, इसीलिए न्यूज में कहा गया कि विधायक दल का नेता चुना गया उनको। अब जैसे ही कोई विधायक दल का नेता चुना जाता है, मान के चलिए कि वो मुख्यमंत्री बनेगा ही बनेगा, वो निश्चित ही है। हाँ, अगर आपने कोई दूसरा चुन लिया तो भले फिर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। एक न्यूज आपने ये भी सुनी है कि यूरोपीय संघ के कुछ देश और खाड़ी देश के कुछ मेंबर्स, दोनों देशों के मेंबर, दोनों समूह के मेंबर्स जो हैं वो अभी श्रीनगर के दौरे पर गए हैं, वहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। खासकर जो जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 हटाया गया है उसके बाद ये मुद्दा मामला कहीं ना कहीं एक वैश्विक मामला भी बन गया है। तो ये वो दौरा कर रहे हैं, दौरा करने के बाद वहाँ की स्थिति का जायजा लेंगे, हालात देखेंगे और फिर वो अपनी रिपोर्ट देंगे या अपनी तरफ से वक्तव्य देंगे। तो उसे दुनिया को ये लगेगा कि ठीक है, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि स्थिति बेहतर है, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि नहीं स्थिति बदतर होती जा रही, तो वस्तु स्थिति क्या है तो दुनिया को पता लग सकेगा। तो उसके लिए वो उन्होंने दौरा किया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि विवाद में विश्वास योजना कैबिनेट ने शुरू कर दिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आपके पास बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है और साथ ही साथ कहीं न कहीं जो आपके अर्थशास्त्र की तैयारी होती, अर्थव्यवस्था की तैयारी कहना चाहिए, कि उसमें भी ये जो फैक्टर है यानी कि ये जो तथ्य है आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकता है। और मैंने जो शुरू में आपसे कहा है कि शायद अब हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम कुछ उस तरफ जा रहा है जहां परस्पर बातचीत के जरिए विवादों को हल करने को महत्व दिया जा रहा है। जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था पंच परमेश्वर का कॉन्सेप्ट, हम धीरे 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 कहीं ना कहीं उधर बढ़ रहे हैं और ये केवल भारत में ही नहीं हो रहा है बल्कि आप कह लीजिए कि पूरे वैश्विक स्तर पर यह फिनोमेना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आज के करंट कंटेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया गया है और वह है विश्व की गति को बढ़ाता शहरीकरण। यानी कि जैसे जैसे हम अपने यहां अर्बनाइजेशन को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो विकास की गति है वह तेज होती चली जाएगी। ये एक नया कॉन्सेप्ट, हालांकि यूएनओ इसे बहुत पहले कह चुका है लेकिन शायद आपको बहुत कम इसके बारे में सुनने को पढ़ने को मिलता होगा, क्योंकि जब हम भारत के विकास की बात करते हैं तो देखिए सामान्यतया क्या कहा जाता है कि भारत गांवों का देश है, गांव के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, गांव से जो लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं उन्हें रोका जाना चाहिए, हम गांव के स्तर पर उद्योग प्रोवाइड करें, उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करें, जिसको हमारे कलाम साहब जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने बहुत जबरदस्त रूप से एडवोकेट भी किया, उसके प्रवक्ता बने कि हम गांव में ही शहर की सुविधाएं उपलब्ध कराएं तो वो वहीं रहेंगे, शहर में नहीं आएंगे, तो शहर भी हमारे बेहतर रहेंगे, शहरों पर अनावश्यक बोझ नहीं बढ़ेगा। वो एक मॉडल है। लेकिन एक दूसरा जो मॉडल है जो खासकर भी इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है वो मॉडल ये है कि नहीं, गांव में उतनी सुविधाएं उपलब्ध कराना संभव ही नहीं है, थोड़ी थोड़ी आबादी होती है, वो आबादी भी बिखरे हुए होते हैं, उनका ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो बहुत बड़ा होता है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है, और फिर आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा धन चाहिए और उस धन का हमारे यहाँ अभाव है, तो क्या किया जाए। तो उसमें अब एक मॉडल आया है कि नहीं, लोग शहरों के आसपास आए, जगह पर इकट्ठे हों, ज्यादातर जो डेंसिटी है उसको बढ़ाया जाए, जो बाकी हमारा एरिया होगा वहां दूसरे काम होंगे, ठीक है वहां एग्रीकल्चर हो रहा है, दूसरे चीजें हो रही हैं, लेकिन ये आसपास के एरिया में रहें और उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और वहां फिर बाकी दूसरी सारी सुविधाएं दी जाए, एजुकेशन है, हेल्थ है, तो तभी देश तेजी से विकास कर सकेगा। तो अभी ये जो आपको आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है अरविंद परंगड़िया जी का लिखा हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये प्रकाशित हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने इस शहरीकरण के मॉडल को ही एक प्रकार से फेवर किया और उसमें उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। तो मुझे लगता है कि यह एक विचारों के स्तर पर आपके दिमाग को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त है और इसे आपको डेफिनेटली पढ़ना ही चाहिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। मुख्य विषय के तहत मैंने आज जो चुना है वो अर्थशास्त्र के केंद्र में क्या होता है, या यूं कह लीजिए कि बाजार के केंद्र में क्या होता है। देखिए, जब अर्थशास्त्र कहते हैं या अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थशास्त्र जब हम कहते हैं तो यूं कह लीजिए कि वो थोड़ा सा सैद्धांतिक ज्यादा हो जाता है, है ना। जब हम अर्थव्यवस्था कहते हैं तो वो सीधे सीधे व्यावहारिक हो जाता है, लेकिन सिद्धांत बिना व्यवहार के कोई मायने नहीं रखते। तो इसलिए आप चाहे यहां कुछ भी कह लें, क्योंकि अर्थशास्त्र के तहत भी जो बातें की जाती हैं, जो सिद्धांत दिए जाते हैं, वो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए ही सिद्धांत दिए जाते हैं और हालांकि अर्थशास्त्र अपने आप में बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, लगातार उसमें इजाफा होता रहता है, चीजें बदलती रहती हैं, नए नए सिद्धांत आते रहते हैं, लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है अर्थशास्त्र की या अर्थव्यवस्था की, वह है बाजार, मार्केट। देखिए, जब मैं मार्केट कह रहा हूं तो मार्केट को आपको बहुत विस्तार से समझना होगा। मार्केट का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहां कुछ लोग सामान बेचने के लिए आए हैं और कुछ लोग सामान खरीदने के लिए आए हैं, वही बाजार हुआ। लेकिन ये बहुत सिंपल सा है। जब अब आप थोड़ा सा सोचना शुरू कीजिए कि भाई जो सामान बेचने के लिए आए हैं ये कौन लोग होंगे, तो डेफिनेटली कोई सामान बना रहा होगा, सामान सरप्लस बन रहा होगा। तो फिर अब आप सोचना शुरू कीजिए कि जो सामान बना रहा होगा वो क्या होगा, तो उसमें पता लगा कि उद्योग है, कुटीर उद्योग है, ये सब है। अगर किसान के संदर्भ में सोचेंगे तो किसान भी तो सामान बना रहा है ना, उत्पादित कर रहा है, तो किसान भी इसमें आ जा रहे हैं। लेकिन किसान अपना अनाज बेचेगा कब, जब उसके पास अपनी जरूरत की पूर्ति हो जाएगी और बच जाएगा, यानी कि सरप्लस होना चाहिए। तो जब आप सामान बाजार में है के बारे में सोचेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर आप आएंगे कि बाजार में खरीददार होने चाहिए, सामान होना चाहिए, सामान को बेचने वाले लोग होने चाहिए, वो बेचने के लिए तैयार होने रेडी होने चाहिए, और फिर खरीददार होने चाहिए यानी कि कंज्यूमर। अब जब आप कंज्यूमर के बारे में सोचेंगे तो फिर आप ढेर सारी चीजें आ जाएंगी कि इन कंज्यूमर की कमाई कितनी हो रही है, कहां से हो रही है। अगर इनके पास पैसा होगा तभी तो ये सामान खरीद पाएंगे, और अगर पैसा नहीं हुआ ये सामान नहीं खरीद पाएंगे, तो जो सामान बना हुआ है उसका क्या होगा, वो बनना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि जो पूरा का पूरा जो हमारा बाजार है, जो अर्थशास्त्र है, जो अर्थव्यवस्था है, वो बाजार की ही बात करता है, मार्केट। और इस मार्केट के जितने भी तंत्र हैं, जितनी भी ब्रांचेज हैं, वो पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था में आ जाती हैं। दोस्तों, हमारे बहुत ही मैं सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, जब हमारे यहां 15 दिन की क्लासेज होती है तो इसे मैं बहुत विस्तार के साथ अपने स्टूडेंट को बताता हूं, ताकि अर्थव्यवस्था के जो रेशे हैं उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए, और प्री एग्जामिनेशन हो या मेन एग्जामिनेशन हो, अर्थशास्त्र पर जब सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न आते हैं, तो उनके वो सटीक उत्तर तक देने में सक्षम हो सके, मतलब अपने आप को भ्रमित होने से बचा सके, और ऐसा किया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखिए कि जब बाजार है तो ये बाजार ऑपरेट कैसे हो रहा है। एक तो पक्ष मैंने आपको बताया कि वस्तु की लागत वो वस्तु के उत्पादन से जुड़ी हुई है, कंज्यूमर वस्तु की कीमत से जुड़ी हुई है, ये ढेर सारी चीजें हैं। अब ये पूरे के पूरे बाजार का जो संचालन होता है दोस्तों, वो केवल एक थ्योरी से होता है, डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं पूर्ति। जो कंज्यूमर है वो डिमांड करता है, और जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं वो उसकी पूर्ति करते हैं। देखिए, जब मैं प्रोडक्शन करने वाले लोग का मतलब ये नहीं कि उद्योगपति ही माल आकर के बेचता है ना, फिर उसके एजेंट हैं, दुकानदार हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। वो उस माल की पूर्ति कर रहे हैं। मांग और पूर्ति पूरे के पूरे बाजार को संचालित करने वाली जो शक्ति है वह है डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन ये जो डिमांड और सप्लाई इतने छद्म रूप में काम करती है कि सही तरीके से उसे देख पाना, सतह पर देख पाना संभव नहीं होता है। अर्थशास्त्र उसी की खोजबीन करता है, उसकी गहराई में जाता है, और बताता है कि वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो डिमांड और सप्लाई को प्रभावित करते हैं। और कुल मिलाकर के मित्रों, यही है अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का केंद्र। आप कह सकते हैं कि सर, आज आपने इस विषय को लिया क्यों, क्योंकि इसका तो करंट अफेयर से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, आज हमारे पास जो आंकड़े आए हैं सरकार के, वो है कि खुदरा महंगाई की दर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है, 7.59% हो गई है, जो पिछले 6 सालों में सबसे ज़्यादा है। सब्जियों के दाम 50% तक बढ़ गए हैं। दिसंबर में जो औद्योगिक उत्पादन है वह भी 0.3% गिर गया है, और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसका सबसे बड़ा योगदान हमारे कुल रोजगार में 16% है, उसकी भी हालत खराब है। इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 23 इंडस्ट्री माने गए हैं, उसमें से 16 की जो डेटा आए हैं वो निगेटिव रहे हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो इसको आधार बनाकर मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी मूलभूत कुछ बातें की जानी चाहिए। तो दोस्त फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं अर्चना, रीता गिरधारी, गौरव तोमर, विनय कुमार फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, जयसवाल आशु और राम बाबू आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।